अध्याय 10 प्रश्नावली एवं अनुसूची क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। प्रश्नावली का अर्थ एवं स्वरूप मीनिंग एंड नेचर ऑफ क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली व्यवहार परक शोधों में आंकड़े संग्रह करने एवं शोध समस्याओं का अध्ययन करने का काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन है। पहले हम इस प्रश्न पर विचार करें कि प्रश्नावली किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द क्वेश्चनेयर। पैराग्राफ चेंज। प्रश्नावली एक ऐसे प्रश्नों की माला होती है जिसमें शोध समस्या से संबंधित कई प्रश्न दिए होते हैं तथा जिसे सिद्धांतपूर्वक पढ़कर प्रत्यर्थी उनका उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देता है और पुनः उसे शोधकर्ता को लौटा देता है। प्रायः प्रश्नों को एक पुस्तिका के रूप में छपवा दिया जाता है जिसे प्रश्नावली पुस्तिका कहा जाता है। गुडे तथा हार्ट ने प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहा है, अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तथा जिसे प्रत्यर्थी स्वयं भरते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस तरह की परिभाषा अन्य शोध वैज्ञानिकों द्वारा भी दी गई है। अब इस परिभाषा का यदि विश्लेषण किया जाए तो हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। पैराग्राफ चेंज। एक, प्रश्नावली में प्रश्नों की कड़ी या माला होती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी शोध समस्या के चर को मापने के लिए हम उस चर से संबंधित कई प्रश्न एक साथ तैयार कर लिए जाते हैं तो इन प्रश्नों की कड़ी को प्रश्नावली कहा जाता है। उदाहरणार्थ, यदि प्रभुत्व जैसे व्यक्तित्वशील गुण की माप करने के ख्याल से प्रभुत्व से संबंधित कुछ प्रश्नों की माला तैयार कर ली जाए तो इसे हम प्रश्नावली की संज्ञा देंगे। दो, प्रश्नावली को एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें प्रश्न, उसके उत्तर एवं उसके उत्तर के लिए जगह, प्रत्यर्थी का नाम, पता, योग्यता आदि लिखने के लिए भी पर्याप्त स्थान होता है। पैराग्राफ चेंज। तीन, प्रश्नावली की एक विशेषता यह भी है कि इसे प्रत्यर्थी स्वयं पढ़ता है तथा पुस्तिका में छपे प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं देता है। यह उत्तर उसे अपने पूर्व अनुभव के आधार पर देना होता है। चूँकि प्रश्नावली में प्रत्यर्थी अपने बारे में स्वयं वर्णन करता है इसलिए इसे कुछ विद्वानों ने आत्म रिपोर्ट प्रविधि भी कहना पसंद किया है। चेंज। प्रश्नावली के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर। व्यवहार परक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाले में प्रश्नावली को दो कसौटियों पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। क, प्रश्नावली में व्यवहारित एकांशों के आधार पर। प्रश्नावली में व्यवहारित एकांशों के आधार पर प्रश्नावली को मूलतः दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित या सीमित एकांश वाले प्रश्नावली, दो, विस्तृत एकांश वाले प्रश्नावली। ख, क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर। प्रश्नावली को क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है, एक, आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली, दो, डाक प्रश्नावली। इस तरह से यह स्पष्ट है कि प्रश्नावली के चार प्रकार होते हैं। इन सबका वर्णन हम एक एक करके इस प्रकार कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। एक, निश्चित या सीमित एकांश वाले प्रश्नावली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस ढंग के प्रश्नावली के एकांशों का स्वरूप ऐसा होता है जिनका उत्तर सीमाबद्ध या नियंत्रित होता है। इस तरह के प्रश्नावली में प्रत्येक एकांश या प्रश्न के कुछ निश्चित उत्तर दे दिए जाते हैं और उन उत्तरों में से सही उत्तर को चुनकर प्रत्यर्थी अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। इस ढंग के प्रश्नों या एकांशों का एक नमूना निम्नांकित है, एक, आपने मनोविज्ञान में सम्मान क्यों लिया है, अ, एक रुचिकर विषय होने के कारण, ब, अन्य विषयों की तुलना में सरल होने के कारण, स, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका विशेष महत्व के कारण, द, माता पिता या शिक्षक के सुझाव के कारण। प्रत्यर्थी के सामने उपयुक्त प्रश्न या एकांश में चार अनुक्रिया विकल्प दिए जाते हैं जो इस प्रश्न का संभावित उत्तर है। उसे उन उत्तरों में से जिसे वह अपने लिए सही समझता है को चुनकर अपनी अनुक्रिया व्यक्त करेगा। इनमें से कोई एक उत्तर सभी प्रत्यर्थी के लिए सही नहीं होगा और न ही सभी प्रत्यर्थी एक ही उत्तर के रूप में अपनी अनुक्रिया व्यक्त करेंगे। निश्चित या सीमित एकांश वाली प्रश्नावली, फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनेयर का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए कुछ परिकल्पनाएँ की जाती हैं जो निम्नांकित हैं। ए, प्रतिदर्श अर्थात अध्ययन में निम्नलिखित सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के समूह प्रश्नावली की विषय वस्तु से भली भांति परिचित हो। बी, शोधकर्ता को यह पहले से पता होना चाहिए कि प्रतिदर्श द्वारा संभावित उत्तरों का विशिष्ट स्वरूप क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि शोधकर्ता राजनीतिक पार्टी के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति का अध्ययन कर रहा है तो वैसी परिस्थिति में शोधकर्ता को यह पता होना चाहिए कि व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले उत्तर कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां जैसे कांग्रेसी जनता दल, भारतीय जनता दल आदि तक ही सीमित रहेंगे। ऐसा नहीं होने से शोधकर्ता को सभी राजनीतिक पार्टियों का नाम अनुक्रिया विकल्प में देना होगा, जिससे एकांश या प्रश्न की वैधता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। पैराग्राफ चेंज निश्चित या सीमित एकांशावली प्रश्नावली के कुछ गुण तथा दोष हैं। इसके प्रमुख गुण निम्नांकित हैं। पैराग्राफ चेंज ए, निश्चित या सीमांत अनुक्रिया वाले एकांशों या प्रश्नों का प्राप्तक लेखन करना तथा कूटबद्ध करना काफ़ी आसान होता है। कूटबद्ध करना एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता अनुक्रियाओं को एक दूसरे से अलग करने तथा उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करने के ख्याल से विशेष अंक प्रदान करता है। जैसे जनता दल के प्रति अनुक्रिया के लिए एक, भारतीय जनता दल के प्रति अनुक्रिया के लिए दो तथा कांग्रेस के प्रति अनुक्रिया के लिए तीन। देकर शोधकर्ता प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का कूटबद्धकरण कर सकता है। इससे एक विशेष फायदा यह होता है कि बाद में शोधकर्ता इसके आधार पर विशेष सांख्यिकीय विश्लेषण आसानी से कर पाता है। पैराग्राफ चेंज बी, निश्चित या सीमित अनुक्रिया वाले एकांशों या प्रश्नों में प्रत्यर्थी को कुछ लिखना नहीं पड़ता है। वह सिर्फ दिए गए उत्तरों में से जिसे वह सही उत्तर समझता है पर एक चिन्ह लगाकर अपनी अनुक्रिया कर देता है। इससे विशेषकर उस प्रत्यर्थी को अधिक लाभ पहुंचता है जो किसी कारण से अपने विचार को शाब्दिक रूप से वर्बली व्यक्त करने में असमर्थ होता है। पैराग्राफ चेंज सी, निश्चित या सीमित अनुक्रिया वाले प्रश्न फिक्स्ड रिस्पांस क्वेश्चनेयर का उत्तर देने में कम समय लगता है। अगर ऐसे प्रश्नों या एकांशों वाली प्रश्नावली यदि लंबी भी हो तो प्रत्यर्थी उनका उत्तर देने में उतना समय नहीं लेते जितना कि एक ऐसा प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर देने में वे लेते हैं जिनके उत्तर देने के लिए कुछ लिखित शब्दों या लिखित वाक्यों का प्रयोग अनिवार्य होता है। पैराग्राफ चेंज, इन गुणों के बावजूद निश्चित या सीमित अनुक्रिया वाले प्रश्नों फिक्स्ड रिस्पांस क्वेश्चंस के कुछ अवगुण हैं जो निम्नांकित हैं। ए, निश्चित या सीमित अनुक्रिया वाले प्रश्नों का एक मुख्य अवगुण यह बतलाया गया है कि अक्सर शोधकर्ता प्रत्यर्थी के सामने सभी तर्कपूर्ण एवं संगत विकल्पों को नहीं रख पाते हैं। इनका प्रमुख कारण यह होता है कि शोधकर्ताओं को प्रत्येक अनुक्रिया विकल्पों को सामान्यतः एक सीमित संख्याओं जैसे दो, तीन या चार में व्यक्त कर देने होता है और इन विकल्पों में वे सही तरह के संगत विकल्पों को दर्शाने में अक्सर असमर्थ रहते हैं। फलस्वरूप शोधकर्ता को ऐसे प्रश्नों के उत्तरों या अनुक्रियाओं से जो सूचनाएं मिलती हैं वे अधिक वैज्ञानिक या तर्कसंगत नहीं हैं रह जाती हैं। पैराग्राफ चेंज बी, निश्चित या सीमित अनुक्रिया वाले प्रश्नों में प्रत्यर्थी प्रायः द्रुत गति बनाए रखने के ख्याल से प्रश्नों के दिए गए अनुक्रिया विकल्पों को ठीक से पढ़े बिना ही किसी अनुक्रिया पर चिन्ह या टिक लगाकर उत्तर दे देता है। इस प्रकार की अनुक्रिया वृत्ति विशेषकर उस प्रश्नावली से अधिक देखने को मिलता है जिसकी लंबाई अधिक होती है, यानी जिसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। पैराग्राफ चेंज दो, विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली। इस तरह की प्रश्नावली में प्रत्यर्थी को दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देना है। शोधकर्ता निश्चित या सीमित अनुक्रिया वाले प्रश्नों के समान यहाँ अपनी ओर से कोई अनुक्रिया विकल्प नहीं तैयार करता है। प्रत्यर्थी दिए गए प्रश्नों को पढ़कर तथा उन्हें समझकर उनका उत्तर अपने शब्दों में प्रश्न के नीचे दिए खाली स्थान में लिखता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्तियों में भी दे सकता है। इस तरह के प्रश्नों का एक नमूना निम्नांकित है। पैराग्राफ चेंज, विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली के कुछ गुण दोष बतलाए गए हैं। इसके प्रमुख गुणों को इस प्रकार दर्शाया गया है। ए, इस ढंग की प्रश्नावली उस परिस्थिति में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है जहां उपकर्ता को प्रतिदर्श या अध्ययन में निम्नलिखित किए आप कीजिए सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के बारे में जो पूर्व सूचना प्राप्त है वह अपर्याप्त है। चूंकि प्रत्यर्थी को ऐसे प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप से देना होता है इसलिए वे अपने उत्तर के माध्यम से अपनी मनोवृत्ति मत ज्ञान आदि की पूर्ण अभिव्यक्ति कर देते हैं। अतः मात्र उनके उत्तरों के ही आधार पर शोधकर्ता प्रत्यर्थी के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त कर लेता है। पैराग्राफ चेंज बी, विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली उस परिस्थिति में भी अधिक लाभदायक सिद्ध होती है जहाँ शोधकर्ता प्रत्यर्थी की संगठनात्मक क्षमता सूझपूर्ण व्यवहार आदि की गहराई में जाना चाहता है। टुकमैन द्वारा एक अध्ययन कर यह दिखला दिया गया है कि विस्तृत एकांशावली प्रश्नावली द्वारा प्रत्यर्थी की संगठनात्मक क्षमता तथा सूझपूर्ण व्यवहार की जितनी गहराई से जाना जा सकता है उससे काफ़ी कम मात्रा में सूचना हमें निश्चित या सीमित एकांश वाले प्रश्न से ही मिल पाती है। पैराग्राफ चेंज, विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली के कुछ दोष भी बतलाए गए हैं जो निम्नांकित हैं। पैराग्राफ चेंज ए, विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली का सबसे बड़ा अवगुण या दोष यह बतलाया गया है कि ऐसे प्रश्नों के प्रति दिए गए उत्तरों या अनुक्रियाओं को वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करके उससे एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। प्रश्नावली के एक ही एकांश या प्रश्न का विभिन्न प्रत्यर्थियों द्वारा दिए गए उत्तर एक समान लग सकते हैं, परंतु वास्तव में प्रत्येक प्रत्यर्थी का अर्थ अलग अलग हो सकता है तथा उसका मूल्य भी अलग अलग हो सकता है। आंकड़ा विश्लेषण के ख्याल से शोधकर्ता ऐसे सभी उत्तरों को एक ही श्रेणी में रखकर विश्लेषण कर सकता है, परंतु सचमुच में इस ढंग के विश्लेषण से मिलने वाला अंतिम निष्कर्ष गंभीर रूप से सीरियसली दोषपूर्ण माना जाएगा। बी, विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली का प्रयोग उस परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है जब प्रतिदर्श या अध्ययन में शामिल किए गए व्यक्तियों में शाब्दिक रूप से बबली या मौखिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। सी, विस्तृत एकांश वाले प्रश्नावली का एक दोष यह बतलाया गया है कि इससे शोध समस्या के बारे में आंकड़े संग्रह करने में अधिक समय लगता है। बहुत सारे प्रत्यर्थी ऐसा महसूस करने लगते हैं कि सभी प्रश्नों को समझकर उत्तर देने का अतिरिक्त समय उनके पास नहीं है और न ही वे इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई रुचि ही दिखलाते हैं। पैराग्राफ चेंज तीन, डाक प्रश्नावली। डाक प्रश्नावली में जैसा कि नाम से ही पता चलता है प्रश्नावली को शोधकर्ता प्रत्यर्थी के घर या दफ्तर के पते पर डाक के द्वारा भेज दिया जाता है। प्रश्नावली के साथ प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर देने संबंधी निर्देश तथा एक लिफाफा भी भेज दिया जाता है। प्रत्यर्थी से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रश्नों का उत्तर देकर लिफाफा पर छपे पते पर डाक ही द्वारा उसे यथाशीघ्र लौटा दे। डाक प्रश्नावली के भी कुछ गुण दोष बतलाए गए हैं। इसे प्रमुख गुण निम्नांकित है। ए, डाक प्रश्नावली द्वारा बहुत ही कम समय में देश के कोने कोने बिखरे हुए व्यक्तियों से आसानी से आंकड़े संग्रह कर लिए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इस तरह की प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में भी खर्च कम लगता है तथा समय भी बहुत कम लगता है। बी, डाक प्रश्नावली में प्रत्यर्थी के साथ सीधा संपर्क अर्थात आमने सामने की संपर्क की जरूरत नहीं होती। इसके दो फायदे हैं। पहला तो यह कि शोधकर्ता उन सभी समस्याओं से बच जाता है जो प्रत्यर्थी के साथ सीधा संपर्क उत्पन्न करने से संबंधित होते हैं तथा दूसरा यह कि प्रत्यर्थी प्रश्नों का उत्तर देते समय शोधकर्ता की उपस्थिति से होने वाली घबराहट तथा संकोचशीलता से भी बच जाता है। पैराग्राफ चेंज इन गुणों के बावजूद डाक प्रश्नावली के कुछ अवगुण बतलाए गए हैं जो निम्नांकित है। ए, डाक प्रश्नावली का सबसे प्रमुख अवगुण यह बतलाया गया है कि इस ढंग की प्रश्नावली की प्रत्यर्थी कम महत्व देकर उससे प्रति कोई अनुक्रिया प्राय नहीं करते हैं तथा उसे पुनः डाक द्वारा शोधकर्ता को लौटाते ही नहीं। ब्लैक तथा चैंपियन 1976 ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, अनडबल इन्वर्टेड कॉमा, यद्यपि डाक प्रश्नावली के प्रति अनुक्रिया का आकलन परिवर्तित होता रहता है, समान प्रत्याशा यह है कि करीब 70% डाक प्रश्नावली को लौटाया ही नहीं जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता के लिए किसी भी तरह के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है और संग्रह किए आंकड़े अर्थहीन हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज बी, डाक प्रश्नावली में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि प्रश्नों का उत्तर देने वाला व्यक्ति ठीक वही हो जो उसके प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है। ऐसा संभव है कि पति को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया हो परंतु पत्नी को नहीं और प्रश्नों का उत्तर किसी कारण से पति की जगह पर पत्नी देकर उस प्रश्नावली को शोधकर्ता को पास लौटा दे। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता को प्रश्नावली के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त होंगे वे निश्चित रूप से दोषपूर्ण होंगे। पैराग्राफ चेंज सी, डाक प्रश्नावली में हमेशा इस बात की संभावना बनी रहती है कि प्रश्नों का गलत अर्थ प्रत्यर्थी द्वारा लगा दिया जा सकता है। चूंकि शोधकर्ता प्रत्यर्थी के सामने उत्तर देते समय स्वयं मौजूद नहीं रहता है इसलिए ऐसा संभावना बनी रहती है कि प्रत्यर्थी उसका गलत अर्थ लगाकर या अनुपयुक्त अर्थ लगाकर उसका उत्तर दे दे। ऐसी परिस्थिति में भी शोधकर्ता को वास्तविक आंकड़े नहीं प्राप्त हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज डी, डाक प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तरों को एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि प्रत्यर्थी उत्तर देना प्रारंभ करने से पहले पूरी प्रश्नावली को एक बार पढ़ लेता है। पैराग्राफ चेंज ई, डाक प्रश्नावली उदाहरण उन परिस्थितियों में अधिक लाभप्रद साबित होता है जहां शोध समस्या से संबंधित प्रश्न आसान एवं सीधा हैं, परंतु जब तकनीकी तथा जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो अक्सर ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रत्यर्थी नहीं देता है या उसका गलत अर्थ लगाकर वह कुछ दूसरा ही उत्तर दे देता है। रफ चेंज स्पष्ट है कि डाक प्रश्नावली में एक ओर जहाँ समय एवं धन की मित व्यवता है तो दूसरी ओर उसके साथ अनेक प्रकार की जटिलताएं भी शामिल हैं। चार आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनेयर। आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली वैसे प्रश्नावली को कहा जाता है जैसे शोधकर्ता प्रत्यर्थियों के एक समूह पर समानता है जिसमें प्रत्यर्थियों की संख्या 20-30 होती है, हालांकि ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है, अपनी उपस्थिति में क्रियान्वित करता है। इस ढंग की प्रश्नावली को क्रियान्वित करने में शोधकर्ता स्वयं समूह में खड़ा होकर मानक निर्देश देता है तथा यदा कदा प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नों को समझने में होने वाली गलतफहमियों को भी दूर करता है। क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पहले शोधकर्ता प्रत्यर्थियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध भी स्थापित कर लेता है ताकि उसे प्रत्यर्थी से अधिक सहयोग मिल सके। पैराग्राफ चेंज आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली के भी कुछ गुण दोष बतलाए गए हैं। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। ए इस प्रश्नावली को करीब करीब सभी प्रत्यर्थी पूरा करके लौटाते हैं। ऐसा न के बराबर होता है कि प्रश्नों को अधूरा छोड़कर प्रश्नावली को लौटा दिया गया हो। इससे आंकड़े पर निर्भरता अधिक बढ़ जाती है। बी इस प्रश्नावली में शोधकर्ता को यह पता होता है कि सही प्रत्यर्थी ही प्रश्नों का जवाब दे रहा है। सी इस प्रश्नावली में शोधकर्ता प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को समझने में बहुत कठिनाई या संभ्रांति को दूर करने के लिए मौजूद रहता है। फलस्वरूप प्रत्यर्थी द्वारा जो भी उत्तर दिए जाते हैं उसमें मिलने वाला आंकड़ा वैज्ञानिक होता है। पैराग्राफ चेंज इन गुणों के बावजूद इस तरह की प्रश्नावली के कुछ दोष या परिसीमाएं बतलाई गई हैं जो निम्नांकित है। पैराग्राफ चेंज ए डाक प्रश्नावली की तुलना में आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली अधिक खर्चीली तथा समय लेने वाली प्रविधि मानी गई है क्योंकि इससे शोधकर्ता को आंकड़ों का संग्रहण अक्सर प्रत्यर्थियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करके करना होता है। बी आमने सामने क्रियान्वयन प्रश्नावली में प्रतिदर्श की संख्या छोटी होती है या फिर उन्हीं व्यक्तियों को प्रतिदर्श में शामिल कर लिया जाता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन प्रश्नावलियों से प्राप्त परिणाम में कहाँ तक सामान्यीकरण का गुण होगा यह कहना मुश्किल है। क्या ऐसे प्रतिदर्श से प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़ों को पूरी जीव संख्या के लिए सही ठहराया जा सकता है? इसका सही सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इन सभी तरह की प्रश्नावलियों में से शोधकर्ता किस तरह की प्रश्नावली को अधिक महत्व देगा यह इस बात पर आधारित होगा कि शोध समस्या का स्वरूप क्या है तथा शोधकर्ता का उद्देश्य क्या है। तरफ चेंज एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। एक अच्छी प्रश्नावली की कुछ खास खास विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं में निम्नांकित प्रमुख हैं। एक प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का संबंध शोध विषय से सीधा एक स्पष्ट होना चाहिए ताकि प्रत्यर्थी प्रश्नों के महत्व को समझ सके तथा उसका सही उत्तर दे सके। दो यथासंभव प्रश्नावली की लंबाई कम होनी चाहिए क्योंकि अधिक लंबी प्रश्नावली से प्रत्यर्थी में मानसिक निरसता उत्पन्न होती है और वह प्रश्नों का उत्तर भिन्न मन से दे पाता है। प्रश्नावली की लंबाई से मतलब प्रश्नावली में रखे गए प्रश्नों की संख्या से है। तीन प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाले शब्द तथा वाक्य यथासंभव सरल हो ताकि उससे प्रत्यर्थी के मन में किसी प्रकार की संभ्रांति उत्पन्न न हो। प्रत्येक प्रश्न में एक ही स्पष्ट विचार सम्मिलित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रश्न दिशा सूचक नहीं होना चाहिए। चार प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और उससे किसी भी कीमत पर संभावित उत्तरों के बारे में कोई संकेत नहीं मिलना चाहिए। पाँच ऐसे प्रश्नों को जिनसे प्रत्यर्थी लज्जित हो जाए नहीं पूछना चाहिए। छः प्रश्नावली का निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। सात प्रश्नों का क्रम मनोवैज्ञानिक तथा प्रभावकारी होना चाहिए। सामान्यतः प्रश्नावली में सामान्य प्रश्नों को पहले तथा विशिष्ट प्रश्नों को बाद में उपस्थित करना चाहिए या अनुकूल प्रश्नों को पहले या प्रतिकूल प्रश्नों को बाद में रखना चाहिए। आठ प्रश्नावली को देखने में सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। इसकी छपाई सुंदर हो एवं सुव्यवस्थित होनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज प्रश्नावली का निर्माण कैसे करें? हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनेयर। सामाजिक शोध में प्रश्नावली एक अत्यंत ही लोकप्रिय विधि है जिसके सहारे शोध समस्या के बारे में आंकड़े संग्रहण किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि छात्रगण इससे भलीभांति परिचित हों। कि प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाता है। किसी भी प्रश्नावली के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। इन कदमों में निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, प्रारंभिक तैयारियां, इनिशियल कंसिडरेशन। प्रश्नावली के निर्माण में सबसे पहला कदम यह निश्चित करना होता है कि वह कौन सी समस्या या चर है जिसका मापन प्रश्नावली द्वारा करना है। जब शोधकर्ता यह निश्चित कर लेता है कि उसे अमुक शोध समस्या या अमुक चर को मापने के लिए एक प्रश्नावली तैयार करना है, तो यही पर शोधकर्ता को कुछ और भी प्रारंभिक बातों के बारे में यह एक निर्णय कर लेना होता है। इसमें निम्नांकित प्रमुख हैं। पैराग्राफ चेंज, एक, प्रश्नावली का कौन सा प्रकार प्रयोग किया जाएगा, क्या निश्चित या सीमित अनुक्रिया वाले प्रश्न का प्रयोग होगा या विस्तृत एकांश वाले प्रश्नों का प्रयोग होगा, क्या प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाएगी या आमने सामने की परिस्थिति में उसे क्रियान्वयन किया जाएगा। दो, प्रश्नावली की लंबाई क्या होगी, सामान्यतः प्रश्नावली को न अधिक लंबा और न अधिक छोटा होना चाहिए। तीन, प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम क्या होगा, आमतौर पर सामान्य प्रश्न को पहले या विशिष्ट प्रश्नों को बाद में रखना चाहिए। चार, उस जीव संख्या को अच्छी तरह परिभाषित कर लेनी चाहिए जिसके गुणों या विशेषताओं के मापन के लिए प्रश्नावली बनाई जा सकती है। पाँच, क्या जीव संख्या ऐसी है या नहीं कि उसके सदस्यों पर आसानी से प्रश्नावली का क्रियान्वयन किया जा सकता है। सामान्यतः यदि जीव संख्या के सदस्य आसानी से शोध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वैसे सदस्यों को प्रतिदर्श में या अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। दो, प्रश्नों या एकांशों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस और आइटम्स। प्रश्नावली निर्माण के दूसरे चरण में शोधकर्ता प्रश्नावली के लिए तैयार किए गए प्रत्येक विषय से संबंधित प्रश्नों या एकांशों को लिखता है। इस चरण में शोधकर्ता भिन्न भिन्न विशेषज्ञों से प्रश्नों के परिनिर्माण के बारे में उचित एवं वैज्ञानिक सुझाव प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में किए गए पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करता है तथा उसी समस्या पर बने पहले के प्रश्नावली के प्रश्नों के स्वरूप को भी ध्यान में रखता है। इन सारे कार्यों से उसे प्रश्नों का निर्माण करने में सुविधा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन सारे स्रोतों से संबंध स्थापित करने के बाद भी शोधकर्ता प्रश्नों के निर्माण करने से संतुष्ट नहीं हो पाता है। उसे ऐसा अनुभव होता है रहता है कि प्रश्नों को लिखने के लिए जितना दुरुस्त आधार होना चाहिए या उसके पास अब भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ विशेषज्ञों जैसे गुड़े तथा हार्ट 1987 ने अग्रगामी अध्ययन पायलट स्टडी करने का सुझाव दिया है। इस तरह के अध्ययन में वैसे व्यक्तियों जिनके लिए प्रश्नावली का निर्माण होना है का साक्षात्कार लेता है और उस साक्षात्कार में वो तरह तरह के प्रश्नों को पूछता है और फिर यह निर्णय करता है कि कौन कौन सा प्रश्न अधिक उत्तेजक स्टिम्युलेटिव है, कौन सा प्रश्न समस्या के लिए अधिक उचित एवं सुसंगत है आदि। इस तरह से अग्रगामी अध्ययन के आधार पर शोधकर्ता प्रश्नावली में रखे जाने वाले प्रश्नों के बारे में एक अंतिम निर्णय पर पहुंच जाता है। पैराग्राफ चेंज तीन, प्रश्नों का पुनः परीक्षण एवं शोधन। प्रश्नावली निर्माण के तीसरे चरण में किए गए प्रश्नों की सूची को विशेषज्ञों के समूह द्वारा पुनः परीक्षित एवं संशोधित किया जाता है। विशेषज्ञों के समूह में भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं जो मूल रूप से यह देखते हैं कि प्रश्नों को लिखने में शोधकर्ता ने कुछ पूर्वग्रह आदि को नहीं दिखलाया है। यदि वे पाते हैं कि शोधकर्ता द्वारा कुछ प्रश्नों के लिखने में तथा चयन करने में कुछ पूर्वग्रह दिखलाया गया है तो उसमें उचित संशोधन कर देते हैं। इसके अलावा प्रश्नों के तकनीकी दोष की भी जाँच विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती है। इन सभी तरह के पुनः परीक्षण एवं संशोधन के बाद प्रश्नावली प्राक परीक्षण के लिए तैयार समझा जाता है। पैराग्राफ चेंज चार, प्रश्नावली का प्राक परीक्षण करना, प्री टेस्टिंग तथा क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली का प्राक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो मूलतः यह देखने के लिए किया जाता है कि प्रश्नावली कितना प्रभावकारी हो पाया है तथा उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन या परिमार्जन की जरूरत है या नहीं। किडर 1981 के शब्दों में पूर्ण रूपेण अध्ययन से पहले यह देखने के लिए एक प्रश्नावली में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं तथा किस ढंग से कार्य करती है के उद्देश्य से किया गया परीक्षण को प्रश्नावली का प्राक परीक्षण कहा जाता है। प्राक परीक्षण द्वारा शोधकर्ता प्रश्नावली की कुछ उन समस्याओं के बारे में पता लगा पाता है जिसका उसने पहले अंदाज नहीं लगा पाया था। साथ ही साथ प्राक परीक्षण से प्रश्नावली की लंबाई एवं प्रश्नों की वैधता आदि का भी निर्धारण करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है, क्योंकि प्राक परीक्षण जो शोधकर्ता को इन चीज़ों के बारे में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। प्राक परीक्षण कई तरीकों से किया जाता है। एक सीधा तरीका तो यह है जिसमें शोधकर्ता कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत साक्षात्कार करता है, जिसमें वह प्रश्नावली के प्रश्नों को उन व्यक्तियों के सामने रखता है और उनके विचार से अवगत होता है। शोधकर्ता व्यक्ति साक्षात्कार के लिए उन्हीं व्यक्तियों को चुनता है जो अंतिम अध्ययन में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों के समान होते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में व्यक्तियों से प्रश्नावली के प्रश्नों पर उनसे उत्पन्न उत्तर प्राप्त करने के बाद विचार विमर्श किया जाता है तथा उत्तर देने में हुई कठिनाइयों को उनसे बतलाने को कहा जाता है। सामान्यतः एक या दो ऐसे साक्षात्कार लेने के बाद प्राक परीक्षण सामान्य समाप्त हो जाता है और उनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ता प्रश्नावली के स्वरूप के बारे में अंतिम निर्णय ले लेता है। अतः व्यक्तिगत साक्षात्कार से पता चलता है कि प्रश्नावली में कोई बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और बहुत सारे नए प्रश्नों को जोड़ना अनिवार्य है, तो वैसी अवस्था में दूसरा प्राक परीक्षण किया जाता है। प्राक परीक्षण सांख्यिकी विधि द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में प्रश्नों को व्यक्तियों के एक समूह पर क्रियान्वित किया जाता है जो उन व्यक्तियों के समान होते हैं जिनके लिए प्रश्नावली तैयार की जा रही है। फिर दिए गए उत्तरों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके शोधकर्ता इस निर्णय पर पहुंचता है कि किन किन प्रश्नों को प्रश्नावली में अंतिम रूप से रखा जाए या किन किन प्रश्नों को प्रश्नावली से अधिक रूप से हटा दिया जाए। उन प्रश्नों को प्रश्नावली से अंतिम रूप से हटा दिया जाता है जो सांख्यिकीय विश्लेषण के बाद दोषपूर्ण पाए जाते हैं। प्राक परीक्षण की इस सांख्यिकीय विधि को मनोविज्ञान तथा शिक्षा में एकांश विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। 5. प्रश्नावली की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली निर्माण के 5वें चरण में शोधकर्ता प्रश्नावली की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण करता है। प्रश्नावली की विश्वसनीयता से तात्पर्य प्रश्नावली के प्राप्तांकों की संगतता से होता है तथा वैधता से तात्पर्य प्रश्नावली की सत्यता से होता है। प्रश्नावली में संगतता अधिक होने से उसमें अस्थायित्व का गुण आता है और किसी परिस्थिति में यदि प्रश्नावली के एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह पर दोबारा क्रियान्वित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का प्राप्तांक करीब करीब वही होगा जो पहली बार क्रियान्वित करने पर था। अगर शोधकर्ता को व्यक्तियों के साक्षात्कार या अन्य किसी भी विधि से यह पता चलता है कि प्रश्नों द्वारा ठीक वही मत या मनोवृत्ति का पता चल रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो ऐसा समझा जाता है कि प्रश्नावली में सत्यता या वैधता है। कोई भी प्रश्नावली जिसमें विश्वसनीयता या वैधता का गुण पर्याप्त मात्रा में होता है उसे एक वैज्ञानिक प्रश्नावली समझा जाता है। प्राक चेंज। 6. प्रश्नावली की उपयोग संबंधी प्रविधियों का उल्लेख करना। अंत में शोधकर्ता प्रश्नावली के प्रयोग संबंधी तथ्यों का उल्लेख करता है ताकि किसी अध्ययन में उसका उपयोग किए जाने वाले उन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। यहाँ शोधकर्ता प्रश्नावली के प्रयोग संबंधी निर्देश तथा समय आदि का विशेष रूप से उल्लेख कर देता है। प्रश्नों के उत्तर देने की जगह प्रत्यर्थी के नाम, पता, यौन आदि के बारे में सूचनाओं के लिए स्थान तथा कैसी छपाई आदि होगी के बारे में एक निर्णय लेता है। पैराग्राफ चेंज। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नावली के निर्माण में उपयुक्त 6 कदम हैं जिनका पालन करने पर एक दुरुस्त एवं वैज्ञानिक प्रश्नावली तैयार की जा सकती है। पैराग्राफ चेंज। अनुसूची का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ शेड्यूल। प्रश्नावली की माप समान अनुसूची में भी प्रश्नों की एक सूची होती है। इन प्रश्नों को शोधकर्ता प्रत्यर्थी को पढ़कर सुनाता है और प्रत्यर्थी सुनकर उनका उत्तर देता है जिसे शोधकर्ता ठीक ढंग से अभिलेखन करता है। गुडे तथा हॉट, गुडे एंड हॉट 1987 के शब्दों में डबल इन्वर्टेड कॉमा। अनुसूची सामान्यतः प्रश्नों के वैसे सेट को कहा जाता है जिसे भेंटकर्ता आमने सामने की परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति से पूछता है तथा पूरा करता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अनुसूची के अर्थ के बारे में इसी ढंग का विचार अन्य वैज्ञानिकों जैसे मैकॉर्मिक 1980, लुंडबर्ग 1977 द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें अनुसूची के स्वरूप के बारे में जो तथ्य मिलते हैं उसे हम इस प्रकार बतला सकते हैं। एक, अनुसूची में प्रश्नों की सूची होती है। दो, अनुसूची के प्रश्नों को प्रत्यर्थी स्वयं नहीं पढ़ता है बल्कि इन प्रश्नों को शोधकर्ता या साक्षात्कर्ता स्वयं पढ़कर उन्हें सुनाता है। तीन, अनुसूची के प्रयोग के लिए एक आमने सामने की परिस्थिति का होना अनिवार्य है ताकि भेंटकर्ता या शोधकर्ता प्रत्यर्थी से सीधे प्रश्नों को पूछ सके। चार, अनुसूची में शोधकर्ता या भेंटकर्ता को कुशल एवं प्रशिक्षित होना चाहिए क्योंकि प्रत्यर्थी का उत्तर बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रश्नों को किस ढंग से पूछता है। पैराग्राफ चेंज। अनुसूची का प्रकार। टाइप्स ऑफ शेड्यूल। समान वैज्ञानिकों ने अनुसूची को निम्नांकित 5 भागों में बांटा है। एक, प्रेक्षण अनुसूची। प्रेक्षण अनुसूची वैसी अनुसूची को कहा जाता है जहां शोधकर्ता अपनी शोध समस्या के बारे में प्रेक्षण विधि द्वारा आंकड़े संग्रहण करता है। इस अनुसूची में तैयार किए गए प्रश्नों को शोधकर्ता व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से एक खास परिस्थिति में अधिकतर एक स्वाभाविक परिस्थिति में पूछता जाता है तथा साथ ही साथ उसके व्यवहार एवं अन्य क्रियाकलापों का प्रेक्षण भी करता जाता है। प्रेक्षण के दौरान यदि शोधकर्ता यह महसूस करता है कि अनुसूची में कुछ और प्रश्नों को जोड़ दिया जाए तो वह अपने स्वेच्छा से ऐसा कर लेता है। कभी कभी प्रेक्षण अनुसूची का प्रयोग पहले से प्राप्त आंकड़ों की सत्यता की जांच के लिए भी किया जाता है। दो, रेटिंग अनुसूची। रेटिंग शेड्यूल। रेटिंग अनुसूची वैसी अनुसूची को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता व्यक्तियों के मतों मनोवृत्ति पसंद आदि से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों से बनी मापनी श्रेणियों जैसे अत्यधिक अच्छा, अच्छा, तटस्थ, बुरा, अत्यधिक बुरा के रूप में अभिलेखन करता है। स्पष्ट है कि रेटिंग अनुसूची का आधार रेटिंग मापनी की श्रेणियां ही होती हैं। तीन, प्रलेखीय अनुसूची। डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। प्रलेखीय अनुसूची वैसी अनुसूची को कहा जाता है जिसका उपयोग कुछ लिखित स्रोतों जैसे डायरी, पत्र, आत्मकथा, सरकारी अथवा गैर सरकारी कागजात आदि से आंकड़ा संग्रह करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसी अनुसूची में प्रश्नों की संरचना इस ढंग से की जाती है कि उसमें वही पद का प्रयोग हो सके जो आत्मकथा, डायरी, पत्र या अन्य लिखित स्रोतों में किए गए थे। अनुसूची के प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर एक ऐसा प्रलेख तैयार किया जाता है जिससे व्यक्ति के जीवन इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से समझने में मदद मिलती है। चार, संस्थागत सर्वे अनुसूची। प्रत्येक समाज में कुछ महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं जिनके कार्यों का प्रभाव व्यक्तियों की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। महत्वपूर्ण कॉलेज, स्कूल, सरकारी संस्थान आदि ऐसे संस्थानों के उदाहरण हैं। संस्थागत सर्वे अनुसूची वैसी अनुसूची कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता उन महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में प्रश्नों का निर्माण करता है तथा व्यक्तियों पर क्रियान्वयन करके इन संस्थानों के प्रति उनके मत या मनोवृत्तियों से अवगत होता है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग समाजशास्त्री अधिक करते हैं। पाँच, साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची वैसी अनुसूची को कहा जाता है जिसमें भेंटकर्ता केवल मानकीकृत प्रश्नों को ही अपनी अनुसूची में शामिल करता है। ऐसे प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है तथा उन्हें एक निश्चित क्रम में प्रत्यर्थी से पूछता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संरचित साक्षात्कार या मानकीकृत साक्षात्कार में जिस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है उसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। स्पष्ट है कि अनुसूची के कई प्रकार हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में प्रेक्षण अनुसूची, रेटिंग अनुसूची तथा साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग तुलनात्मक रूप से अधिक होता है जबकि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र में प्रलेखीय अनुसूची एवं संस्थागत सर्वे अनुसूची का प्रयोग तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। पैराग्राफ चेंज। एक उत्तम अनुसूची की विशेषताएँ। एक उत्तम अनुसूची की कुछ विशेषताएँ होती हैं जिसमें निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, सही संचारण। एक उत्तम अनुसूची में सही एवं यथार्थ संचारण का गुण होना चाहिए। इसका मतलब कि हुआ कि अनुसूची के प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसके द्वारा उत्तरदाता या प्रत्यर्थी को वही सूचना मिले जो कि शोधकर्ता चाहता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रश्नों की भाषा सरल, सुगम तथा एकार्थी हो। यदि प्रश्नों की भाषा जटिल एवं क्लिष्ट होगी तो ऐसी परिस्थिति में विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचना उत्तरदाता को नहीं मिल पाएगी और इसका अर्थ यह कुछ वह कुछ और लगाकर एक अनुपयुक्त उत्तर दे बैठेगा। इससे अनुसूची की विश्वसनीयता तथा वैधता दोनों ही समाप्त हो जाएगी। 2. सही एवं वैज्ञानिक प्रश्न। अनुसूची में सभी तरह के प्रश्नों को नहीं रखना चाहिए। एक उत्तम अनुसूची की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सही एवं वैज्ञानिक प्रश्नों को ही सम्मिलित करना चाहिए। अनुसूची के प्रश्न निम्नलिखित कसौटी के अनुरूप हो तो अति उत्तम समझा जाता है। पैराग्राफ चेंज ए, प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिनके उत्तर देने में उत्तरदाता या प्रत्यर्थी को लज्जित नहीं होना पड़े। बी, प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उनके प्रति दिए गए उत्तर का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। सी, वैसे प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिसमें आत्मनिष्ठता अधिक एवं वस्तुनिष्ठता कम होती है। 3, अनुसूची को प्रश्नावली के समान ही प्राक-परिचित होना चाहिए। 4, एक उत्तम अनुसूची स्पष्टतः 3 भागों में बटा होना चाहिए, प्रारंभिक भाग, मुख्य भाग तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश। प्रारंभिक भाग में प्रारंभिक सूचनाएं जैसे अनुसूची का नाम, शोधकर्ता का नाम, संस्थान का नाम, उत्तरदाता या प्रत्यर्थी का नाम, उम्र, यौन, पता आदि लिखा होता है। मुख्य भाग में प्रश्न होते हैं तथा अनुसूची के तीसरे भाग में क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश होता है। इसमें यह स्पष्टतः लिखा रहता है उन्हें क्या भर करना है और क्या नहीं करना है। यदि कोई विशेष निर्देश उत्तरदाता को देना है तो उसका भी उल्लेख रहता है। यदि किसी अनुसूची में इन तीनों को स्पष्ट रूप से अलग अलग करके उपस्थित नहीं किया जाता है तो उसे एक उत्तम अनुसूची की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। पैराग्राफ चेंज, उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम यह उत्तम अनुसूची की पहचान कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज, अनुसूची प्रणाली का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ शेड्यूल सिस्टम। अनुसूची प्रणाली के कुछ लाभ तथा अलाभ भी समाज मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1, अनुसूची विधि द्वारा शोधकर्ता, प्रत्यर्थी या उत्तरदाता से अधिक उत्तर प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है क्योंकि इस विधि में शोधकर्ता स्वयं परिस्थिति में उपस्थित रहता है, इसलिए वो उत्तरदाता का अधिक सहयोग प्राप्त कर सकने में समर्थ हो पाता है। 2, इस परिस्थिति में शोधकर्ता की उपस्थिति ही के कारण उत्तरदाता या प्रत्यर्थी प्रश्नों का वास्तविक उत्तर दे पाते हैं। उसकी उपस्थिति के कारण उत्तरदाता कोई मनगढ़ंत उत्तर नहीं दे पाते हैं। इतना ही नहीं, उत्तरदाता अपने मन में व्याप्त किसी प्रकार के भ्रम या शंका को भी दूर करके प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। 3, अनुसूची प्रणाली में चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए प्रश्न उत्तरों को शोधकर्ता द्वारा स्वयं लिखा जाता है अतः उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। इसका परिणाम यह होता है कि भेंटकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता काफ़ी बढ़ जाती है। 4, अनुसूची प्रणाली में चूंकि शोधकर्ता स्वयं परिस्थिति में उपस्थित रहता है तथा स्वयं ही प्रश्नों को उत्तरदाता से पूछता है अतः इस विधि से शोध समस्या के बारे में शोधकर्ता द्वारा गहराई से छानबीन संभव है। 5, इस प्रणाली में उत्तरदाता के साथ शोधकर्ता का व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो पाता है अतः उत्तरदाताओं का अधिकतम सहयोग इस विधि में मिल पाता है। अनुसूची प्रणाली के प्रमुख अलाभ डिसएडवांटेजेस निम्नांकित हैं। 1, अनुसूची प्रणाली काफ़ी महंगी एवं समय लेने वाली प्रणाली है क्योंकि इस प्रणाली में शोधकर्ता को प्रत्येक प्रत्यर्थी या उत्तरदाता से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है और कई बार तो उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए शोधकर्ता को विशेष समय की नियुक्ति भी करनी पड़ती है जिसमें समय एवं धन दोनों की काफ़ी बर्बादी होती है। 2, इस प्रणाली में शोधकर्ता की उपस्थिति कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देती है जैसे उनकी उपस्थिति के कारण उत्तरदाता स्वतंत्र होकर जवाब देने में कठिनाई महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, वे सारे व्यक्तिगत एवं गुप्त सूचनाओं को तो अक्सर छिपा ही लेते हैं। 3, इस प्रविधि में प्रशिक्षित शोधकर्ता की आवश्यकता अधिक होती है विशेषकर जब प्रतिदर्श बड़ा होता है तथा बड़े क्षेत्र में बिखरा होता है तो ऐसी परिस्थिति में तो कई साक्षात्कारकर्ता या भेंटकर्ता की जरूरत पड़ती है और उन सभी को प्रशिक्षण देकर क्षेत्र में भेजना अनिवार्य हो जाता है। इनका परिणाम यह होता है कि इस विधि द्वारा आंकड़े संग्रह करने में खर्चा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण का सारा खर्च शोधकर्ता को ही उठाना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। इन अलाभों के बावजूद अनुसूची प्रणाली का प्रयोग विशेषकर समाजशास्त्रीय शोधों में काफ़ी किया जा रहा है। मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं जैसे समाज मनोविज्ञान तथा औद्योगिक मनोविज्ञान के शोधों में भी अनुसूची प्रणाली का प्रयोग अधिक किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। प्रश्नावली एवं अनुसूची एक दूसरे से काफ़ी समान है। प्रमुख समानता इस बात की है कि इन दोनों तरह की प्रविधियों में शोध समस्या के बारे में कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर प्रतिथि देता है। उत्तर से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस समानता के बावजूद प्रश्नावली एवं अनुसूची में मूल रूप से निम्नांकित अंतर है। एक, प्रश्नावली आंकड़े संग्रह करने की एक परोक्ष विधि है, जबकि अनुसूची आंकड़े संग्रह करने की एक प्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली विधि में अक्सर देखा गया है कि शोधकर्ता क्षेत्र में स्वयं न जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजकर आंकड़े संग्रह करा लेते हैं, या फिर प्रश्नावली को ही डाक द्वारा प्रत्यर्थी या उत्तरदाता के पास भेजकर उनसे उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अतः प्रश्नावली आंकड़े संग्रह करने की एक परोक्ष विधि है। अनुसूची के साथ ऐसी बात नहीं है। इसमें शोधकर्ता स्वयं प्रश्नों को उत्तरदाता से पूछता जाता है और उसके प्रश्नों का अभिलेख करता जाता है। अतः अनुसूची तुलनात्मक रूप से आंकड़े संग्रह करने की एक प्रत्यक्ष विधि मानी जाती है। तीन, प्रश्नावली में प्रश्नों को पढ़ लेकर उत्तरदाता या प्रत्यर्थी स्वयं उनका उत्तर देता है, परंतु अनुसूची में शोधकर्ता प्रश्नों को पढ़ पढ़कर उत्तरदाता को सुनाता है और उत्तरदाता सुनकर उन प्रश्नों का उत्तर देता जाता है। तीन, प्रश्नावली द्वारा कम समय में ही अधिक से अधिक प्रत्यर्थी जो भिन्न विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं से उत्तर प्राप्त कर लिए जा सकते हैं। इस सिलसिले में मूल रूप से डाक प्रश्नावलियों की भूमिका अधिक सराहनीय है, परंतु अनुसूची के साथ ऐसी बात नहीं है। इसमें शोधकर्ता के लिए एक संभव नहीं है कि वह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे प्रत्यर्थियों के पास व्यक्तिगत रूप से जाए और उनसे उत्तर प्राप्त करे, क्योंकि ऐसा करने में काफ़ी समय लगेगा जिसे आमतौर पर कोई शोधकर्ता नहीं देना चाहेगा। चार, प्रश्नावली विधि में शोधकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच एक दूरी पाई जाती है, क्योंकि इस विधि में शोधकर्ता एवं उत्तरदाता के बीच सीधे संपर्क की कमी होती है, परंतु अनुसूची प्रणाली में ऐसी बात नहीं होती है। इस प्रश्नावली में शोधकर्ता उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखता है, जिसका परिणाम यह होता है कि दोनों के बीच किसी प्रकार की दूरी नहीं रह जाती है। पैराग्राफ चेंज। पाँच, संग्रह की गई सूचनाओं की विश्वसनीयता तथा निर्भरता को ध्यान में रखते हुए भी इन दोनों विधियों में अंतर में अंतर किया जाता है। सामान्य मत यह है कि प्रश्नावली विधि से संग्रह की गई सूचनाएं अधिक अधिक विश्वसनीय एवं निर्भर योग्य नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें शोधकर्ता एवं परिस्थिति में उपस्थित नहीं होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उत्तरदाता प्रश्नों को जैसे तैसे पढ़कर मनमाने ढंग से उत्तर दे देता है। परंतु अनुसूची प्रणाली के साथ ऐसी बात नहीं है। इससे संग्रहण की कई सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं निर्भर योग्य होती हैं, क्योंकि इसमें शोधकर्ता अपनी उपस्थिति में ही उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त करता है। छः, प्रश्नावली का प्रयोग मात्र उन व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है जिनकी शैक्षिक योग्यता पर्याप्त हो, क्योंकि प्रश्नों को पढ़कर समझना तथा फिर उत्तर लिखना उनकी जवाबदेही होती है। परंतु अनुसूची का प्रयोग उन व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है जिनकी शैक्षिक योग्यता उतनी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्नों को तो स्वयं शोधकर्ता ही पढ़ता जाता है और उत्तरदाता को मात्र उसे सुनकर जवाब ही देना होता है। सात, प्रश्नावली में अनुक्रियाहीनता की घटना होती है, क्योंकि बहुत से लोग कई प्रश्नों का उत्तर देना छोड़ देते हैं, और यदि डाक से प्रश्नावली उनके पास भेजी गई है तो वे उसे लौटाते भी नहीं। परंतु अनुसूची में ऐसी अनुक्रियाहीनता की संभावना कम होती है, क्योंकि इसमें साक्षात्कारकर्ता स्वयं उपस्थित होकर कोशिश करता है कि उसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हाँ, इसमें साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रहित होने की संभावना अधिक होती है। 8, प्रश्नावली में विशेषकर डाक प्रश्नावली में यह सुनिश्चित नहीं होता है कि प्रश्नों का उत्तर सही उत्तरदाता ने दिया है या नहीं, परंतु अनुसूची में सही उत्तरदाता की पहचान तय रहती है। 9, प्रश्नावली में एक विस्तृत एवं प्रतिनिधि प्रतिदर्श का अध्ययन संभव है, परंतु अनुसूची में ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि साक्षात्कारकर्ता को बड़े क्षेत्र में तथा फिर भिन्न भिन्न जगहों पर भेजना संभव नहीं है। 10, प्रश्नावली में अधूरा एवं गलत अनुक्रिया तथा सूचनाओं को संग्रहित किए जाने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, परंतु अनुसूची में जो सूचनाएं संग्रहित होती है वे सामान्यतः पूर्ण एवं यथार्थ होती हैं। 11, प्रश्नावली के माध्यम से सामान्यतः गंभीर एवं अधिक विस्तृत स्वरूप की समस्याओं का अध्ययन संभव हो पाता है, परंतु अनुसूची के माध्यम से प्रायः साधारण एवं विशिष्ट तरह की समस्या के अध्ययन का प्रयास किया जाता है। प्रश्नावली तथा अनुसूची के भाषा माध्यम में भी अंतर होता है। प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा अधिक सामान्य तथा विस्तृत होती है, क्योंकि इसका उपयोग एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है, जबकि अनुसूची की भाषा प्रायः साधारण एवं स्थानीय होती है, क्योंकि इसका उपयोग सीमित क्षेत्र में ही होता है। 13, प्रश्नावली के प्रश्न प्रायः लंबे एवं स्वव्याख्यात्मक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। यहाँ शोधकर्ता यह कोशिश करता है कि उत्तरदाता प्रश्नों के अर्थ को ठीक से समझ कर उत्तर दे, और उनके इस प्रयास में उत्तरों का स्वरूप कुछ लंबा हो जाता है। अनुसूची में ऐसी बात नहीं होती है। अनुसूची में चूंकि साक्षात्कारकर्ता स्वयं ही परिस्थिति में उपस्थित होता है, अतः वह प्रश्नों का स्वरूप संक्षिप्त ही रखता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उत्तरदाता उसका अर्थ नहीं समझेगा तो वह उसे समझा देगा। रफ चेंज स्पष्ट है कि प्रश्नावली तथा अनुसूची में समानता होते हुए भी काफ़ी भिन्नता है।